ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
போலே உஸ்ஸே வி கஹரே அந்தகார மே க்யூ கிர்தா ஹை, க்யூங்கி உஸ்கே அந்தர் கர்த்தா ஔர் போக்தாபன் ரஹதா ஹை. தோ கர்த்தா ஹோனே பர் कर्म का फल भोगना पड़ेगा. फल भोगने के लिए फिर शरीर आदि में जाना, क्योंकि कर्ता भोक्ता बनने होने के लिए जब स्व को कर्ता भोक्ता समझोगे तो स्व के कर्ता भोक्ता के फल को भोगने के लिए आखिर बार बार शरीर के बिना तो कुछ भोगा नहीं जाता, शरीर के बिना कुछ किया नहीं जाता, शरीर के बिना कोई कर्म नहीं होता है. अर्थात कर्म करने के लिए तो शरीर का होना आवश्यक है, और जब जब शरीर होगा तब तक कर्म होगा, और जब जब कर्म होगा तब तब शरीर होगा. इस प्रकार ये क्रम हमारा आगे से आगे निरंतर बनता ही रहेगा. इसलिए कहा घोर अंधकार में, इससे भी अधिक अंधकार. तब इस क्रम से, बार बार के जन्मादि कर्म से विद्या और अविद्या च उपासते, अविद्या और विद्या उपासते जो इसकी उपासना करते हैं, इससे जन्म मृत्यु का आवागमन का छुटकारा प्राप्त नहीं होता. जन्म मृत्यादि के आवागमन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें इससे निकलने के लिए क्या करना होगा? बोले स्व का ज्ञान, स्व विषय ज्ञान. जो इंद्रियों के द्वारा स्व का ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो तो परोक्ष ज्ञान है, याद रखना. इंद्रियों के द्वारा हमें श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान हुआ कि देवलोक है, देवलोक में देवता हैं. वो देवता कैसे प्रत्यक्ष हैं? उन देवताओं का प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया कानों से सुन करके, आंखों से देख करके, मन से चंद्र संकल्प विकल्प करके. हमने उनका, जो परोक्ष देव थे जिनके विषय में सुना था, और उन देवताओं की हमने अपने आप में अप्रोक्षा अनुभूति की. तो ये जो ज्ञान हुआ ये इंद्रिक ज्ञान हुआ, परंतु दूसरा जो ज्ञान है जो आत्मस्वरूप ज्ञान है. इसलिए इन ज्ञानों को, इस व्यवहार को, इस प्रकार का जो व्यवहार है, बोली इस व्यवहार से जो ज्ञान हुआ, इस ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं, उसके लिए तो महावाक्य जन. महावाक्य से जो वृत्ति बनती है, महावाक्य जन्य वृत्ति, महावाक्य से जो स्वस्वरूप का बोध हुआ, अपने स्वरूप में जो बोध हुआ, महावाक्य से हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि. इन महावाक्यों के द्वारा वह तत्त्व तुम ही हो, जो सर्वव्यापक तत्त्वमसि, वह तत्व वह तुम ही हो. इस प्रकार की वृत्ति एक है, और अहम ब्रह्मास्मि, ये दोनों बात समझने के लिए, मैं ही ब्रह्म हूं, तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि तुम ही ब्रह्म हो, अर्थात तत् और तुम में जो मैं हूं सो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूं. इस प्रकार की जो वृत्ति बनी, बोले किससे ज्ञान हुआ? वो महावाक्य के द्वारा. इस महावाक्य के श्रवण से जो प्रत्यक्ष अनुभव किया, उस वह मुक्त स्वरूप ही है, वह ज्ञान नहीं, ज्ञान स्वरूप ही है, वहां कुछ बना नहीं. ऐसा बोध महावाक्य ने जो बोध कराया उस महावाक्य ने कुछ बनाया नहीं, अर्थात महावाक्य के से जो बोध हुआ उस बोध में कुछ क्रिया नहीं है, कुछ कहीं गए नहीं, आए नहीं, कुछ किया नहीं, केवल समझ भर गए। मैं हमेशा कहती हूँ बात केवल समझ में आने की है, समझने की है। समझ जाओ तो चुटकी का खेल है, नहीं तो जन्म जन्मांतर का फेर है। इस बात में घूमते रहो, कर्म उपासना के इस चक्र में निरंतर लगे रहें, और पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम इस चक्र के अंदर चलते रहे। बात समझ में आ जाएगी, एक बार के समझने से नहीं, कई बार जब हम इन बातों को सुनते हैं, सुनते 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 पढ़ते पढ़ते रटते रटते, और कब इन साक्षात भगवती श्रुति की कृपा हो जाएगी, बोले कब कृपा हो जाएगी, जब मन चित्त बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म, क्योंकि ये तत्व बहुत सूक्ष्म आते सूक्ष्म है, नहीं तो कर्म और उपासना के व्यवहार में लगे हुए। ये कर्म और उपासना का व्यवहार कैसे चलता है, इस पर एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है कि एक बार एक कोई सेठ जी किसी संत को मिलने के लिए गए। जब संत को मिलने के लिए गए तो सोचा कि हमारे महात्मा के पास जाओ तो खाली हाथ क्या जाना चाहिए, तो साथ में एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता लेकर गए। महात्मा जी को जब वो गुलदस्ता भेंट किया तो बड़े प्रेम से टिकटिकी लगाकर वो उस गुलदस्ते को देखते रहे। तो ले जाने वाले ने सोचा कि महाराज मेरी ओर तो देख ही नहीं रहे, ये तो सारा ध्यान लगाकर इस गुलदस्ते को ही देख रहे। मन में सोचने लगा शायद ये मेरे से भूल हो गई, और उसने कहा कि महाराज मेरे से कोई गलती हो गई। महाराज ने कहा कि नहीं, तो उसकी ओर देखा, जैसे ही उस गुलदस्ते गलती हो गई, महाराज ने कहा नहीं गुलदस्ते कोई देख रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो ठीक है इसे फेंकते हैं। कहा नहीं नहीं महाराज फेंकिए मत। तो तब कहा कि तुम फेंकने भी नहीं देते हो और देखने भी नहीं देते हो, तो बोलो चाहते क्या हो। बोले कहा महाराज चाहता ये हूं कि आप थोड़ा इसे देखो और थोड़ा मुझे देखो। हम यहां बात समझने की ये है, ये संसार रूपी गुलदस्ते को यदि देखते रहोगे तो भगवान परमात्मा को कब देखोगे, और परमात्मा को देखने के लिए संसार की जो प्रत्यक्ष है इसकी उपेक्षा करके फेंक दो वो भी बात अच्छी नहीं। मैं हमेशा कहती हूं जीवन में अपेक्षा और उपेक्षा यदि ये दोनों चीजें बनी रहीं, अपेक्षा माने ऐसी मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास ऐसा मुझे मिलना चाहिए, पाने की अपेक्षाएं, और जो है जीवन में उपेक्षाएं, हम जो कुछ प्राप्त है हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं पाने की अपेक्षा में। जो कुछ हमको ईश्वर ने दिया है हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो हमें मिला था उसका कि हम उपेक्षा कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, पाने की अपेक्षा में। इसलिए ये अपेक्षा और उपेक्षा किसी का तिरस्कार भी नहीं होना चाहिए, और किसी का इतना आदर भी नहीं होना चाहिए कि हमसे किसी का अनादर हो जाए। जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें न कोई अपेक्षा हो न कोई उपेक्षा हो, जीवन सम्यक हो, बीच का हो। जब स्व में स्थित होगा तभी स्व का बोध होगा नारायण। जब तक स्व में स्थित नहीं होगा, हम अपने आप में स्थिर नहीं होंगे, तब तक ये महावाक्य से हमारी वृत्ति ऐसी बनेगी नहीं। इसलिए उपनिषद ईशावास्य ये कहती है कि स्व में, अपने आप में जब हम स्थिर होंगे, हमारी वृत्ति, जो वृत्ति, वृत्ति नाम व्यवहार का है, जो व्यवहार ज्ञानेन्द्रियों से, कर्मेंद्रियों से, जो वृत्ति व्यवहार में दिन रात लगी हुई है, कभी लोक व्यवहार में, कभी परलोक व्यवहार में, कभी सुंदर सदाचार के आचरण में वृत्ति, कभी धर्म के अनुष्ठान यज्ञादि के, क्योंकि उपासना में देवताओं की उपासना करते हैं तो यज्ञादि करते हैं, और कभी कर्म के साथ जुड़े रहते हैं तो नानाविध संसार के कर्म करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी अच्छे कर्म करते हुए और कभी बुरे कर्म करते हुए, अच्छे बुरे कर्म के साथ ही लगे रहेंगे। इसलिए हमें अच्छे और बुरे, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, अच्छा बुरा अच्छा बुरा का फर्क करते करते अच्छाई और बुराई को ही हम देखते रहेंगे तो अपने आप को कब देखेंगे? अपने आप को देखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जिसे अपने को देखना हो उसे न अच्छा देखना है न बुरा देखना है, इंद्रिक विषयिक ज्ञान को, यही विद्या है और यही अविद्या है। इस दोनों को परिहार कर, अपने से अलग कर, स्व को देखे और स्व को समझे। बोले महावाक्य जो समझाते हैं उन महावाक्यों से अपने को समझे, और अपने को जब समझ जाएगा तो याद रखना यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, जिसको समझने से सब कुछ जाना जा सकता है। सारा विश्व ब्रह्मांड क्या है ये आपको फिर अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे माताएं हैं घर में रसोई बनाती हैं, भगोने में चावल बनाती हैं, और उन्हें चावल तैयार हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए एक एक दाना दबाने की जरूरत नहीं। वो एक चावल के दाने को अपने हाथ से दबाती हैं और देख लेती हैं कि तैयार हुआ कि नहीं, उससे एक से जान लेती। उसी तरह से एक को जानने से सबको जो जान लिया जाता है, वह एक कौन, वह एक है स्व, अपने आप, अपने आप को जानने। मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि दुख की बात यही है कि हम सब को जानने के चक्कर में अपने आप को ही जानना भूल जाते हैं। हमसे बड़ी भूल हो जाती है, बड़ी चूक हो जाती है, भूल पड़ जाती है तो किसकी भूल पड़ती है? अपने आप की भूल पड़ती है और किसी दूसरे की भूल। अपने भूल के कारण हम अपने को भूल करके जो भी करेंगे, जो भी सोचेंगे, जो भी देखेंगे, वो हमारा देखना, वो हमारा सोचना, वो हमारा करना जो होगा वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता नारायण, वो हमेशा अपूर्ण ही होगा, अधूरा ही होगा। जिसने अपने आप को देखा है, अपने आप को समझा है, अपने को समझने के लिए हमें अपने आप में, अपने भीतर जो वृत्ति बाहर याग, बाहर के यज्ञ तो आप करते हैं, कभी अंतर याग कीजिए, अपने भीतर यज्ञ कीजिए। अपने भीतर वो यज्ञ के अभिप्राय है, वो पवित्रता, वो निर्मलता, वो विशुद्ध पवित्रता हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप में है, जो कभी अपवित्र होता ही नहीं, जो कभी किसी के साथ स्पर्श करता ही नहीं, असंग, वह जो तत्व है उसको हम समझ जाएं, जिसमें कभी कोई मलिनता नहीं आती, कोई अशुद्धि है ही नहीं, अपवित्रता है ही नहीं, उस पवित्र से पवित्रतर जो हमारा स्वरूप है उसे हम समझने की कोशिश करें, जो सबसे अलग बैठा, उस पर अपनी वृत्ति को, अपने मन को अपने भीतर लाएं, वो कैसे हो सकेगा। मैं कई बार कहती हूं थोड़ा सा समय निकालो, और समय निकालकर अपने बाहर के इस व्यवहार को बंद करो, इंद्रियों के बहिर्गमन से वह आत्मा न बहिर्में है न अंतस्करण में, न बहिर्शुद्धि से न अंतःकरण शुद्धि से उस तत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अंतर जो अंतःकरण से भी अलग है, जो बाहर से भी अलग है, जिसके लिए कहा गया है कि मनुष्य है ना, मनुष्य मनुष्य जिससे पोषित होता है यह अन्न है, अन्न है, यव है, जौ आदि कहते हैं, अन्नादि, जिस जो मनुष्य का अन्न है। और बड़ा सुंदर प्रसंग ये छांदोग्य उपनिषद में आया है, और दूसरा सप्तधान्न, और दूसरा अन्न कौन सा है, बोले देवताओं का अन्न है, जो हम यज्ञादि में हुत प्रहुत, मतलब जो आहुतियां दी जाती ली जाती हैं, वह यज्ञादि के द्वारा ये देवताओं का अन्न है, इससे भोजन ग्रहण करते हैं हम, भोजन करते हैं अन्नादि को, देवता भोजन ग्रहण करते हैं जो यज्ञादि में, यज्ञ आदि में हम आहुतियां देते हैं, ये तो देवताओं का और मनुष्यों का भोजन हुआ। बोले पशु आदि का भोजन क्या है, पर दूध आदि, गाय का बच्चा दूध पी के ही पलता है और दूध से इनकी रक्षा होती है, पशु का आहार है। और अब आत्मा का आहार क्या है, आत्मा का भोजन क्या है, बोले आत्मा का भोजन तो है मन और बुद्धि प्राण, यह जो आत्मा का भोजन है, जिसे जिसके द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राण के द्वारा आत्मा को समझने के लिए हमें अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने प्राणों से उस आत्म स्वरूप को, मन, बुद्धि और प्राण, ये तीनों ही आत्मा के भोजन हैं, अर्थात आत्मा इन्हें ग्रहण करती है। जैसे शरीर में अन्नादि के भोजन करने से हमारे को शक्ति मिलती है और हम इससे चलते हैं, बैठते हैं, उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। यदि शरीर को अन्नादि न मिले, इसका पोषण न हो, तो ये शरीर कुछ कर सकेगा? कुछ नहीं कर सकता है। शरीर पुष्ट होते हैं अन्नादि के ग्रहण करने से। तो उसी प्रकार जो आत्मा इस मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, प्राणों के द्वारा जानने में आ रहा है, इससे अलग होते हुए भी, मन से अलग होते हुए भी, बुद्धि से अलग होते हुए भी, प्राणों से अलग होते हुए भी जो मन बुद्धि प्राण के द्वारा जिसे हम समझा जा सकता है, वो ये मन जिस मन के द्वारा उस परमात्मा को, परमेश्वर को, उस आत्मा को समझा जा सकता है, जिस बुद्धि के द्वारा उस आत्मा को समझा जा सकता है, बोध किया जा सकता है, जिन प्राणों के द्वारा उस आत्मा का ज्ञान हो सकता है, ये मन बुद्धि प्राण हमारे तीनों लगे हुए हैं किसमें, जिनसे आत्मा का ज्ञान हो सकता है, उन तीनों को हमने कहाँ लगाया हुआ है? हमारी इंद्रिय ज्ञान में। उसने इंद्रिय ज्ञान में इसको ही स्व समझ करके मन को स्व समझ लिया। मन से मैं अपने आप को, मन और बुद्धि से पहले इंद्रिय ज्ञान में माना, मेरे आगे किताब है, किताब को आंखों ने देखा, इंद्रिय ज्ञान है, आंख देखती है और मन कुप के पास भेजती है, मन ने बुद्धि को दिया और बुद्धि ने इस किताब को अच्छी समझी, मन ने इस किताब को अच्छा समझा तो पाने की इच्छा की, बुरा समझा तो इसे अपने से दूर हटाने की इच्छा की, मन ने तो केवल इच्छा की और बुद्धि ने इसे हटाने का प्रयत्न किया, बुद्धि ने इसे अपने पास लाने का प्रयत्न किया, प्रयत्न करने में, कोशिश करने में कौन लग गई? बुद्धि लग गई। और इस बुद्धि इसी के साथ इसे अपनाने में और छोड़ने में, पाने में, त्यागने में काम किया, किसने? बोले बुद्धि ने। अच्छा समझा तो अपनाना चाहा, बुरा समझा तो छोड़ना चाहा, बुद्धि इस काम में लग गई। तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे प्राण, ये तीनों के तीनों कार्य कर रहे हैं। बोले किसमें? केवल इंद्रियों के विषय के जो द्वारा जिसे बताया जा रहा है। इंद्रियां किसे बताती हैं? ज्ञानेंद्रियां देवताओं को बताती हैं और कर्मेंद्रियां भोगों को बताती हैं। देवता और देवता से मिलने वाले भोग, हम कभी भोगों की बात करते हैं और कभी उन भोगों को प्राप्त करने के लिए देवताओं की बात करते हैं, और इष्ट और फल जिसको कहा जाए, इष्ट और फल इसी दो बात में हम निरंतर लगे रहते हैं। ये मेरा इष्ट है और ये इसका फल है, ऐसा करने से मुझे ये फल मिल गया। हम केवल भोगों को ही कल्याणकारी समझ करके उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, जो फल रूप है, फल को प्राप्त करने के लिए दिन रात हम लगे रहते हैं उपासना की, कौन सी देवता की उपासना करके मुझे कौन सा फल प्राप्त होगा, और उस फल की प्राप्ति की चाह में लगे रहे। जो इस प्रकार दिन रात फलों में, फल को प्राप्त करने में और इष्ट के प्राप्त, अपने लिए कल्याणकारी समझकर, बोले कल्याणकारी किससे समझा? केवल ज्ञानेंद्रियों से इतने को ही समझा, यही मेरा कल्याण है। देवताओं को प्रसन्न करना और उनसे अपने लिए मनो अभिलांछित, जैसे हमारी इच्छा है उसके तद्रूप फल को प्राप्त करना, बस यही मेरा कल्याण है, इसी में मेरा कल्याण है, ऐसा समझ के जो लोग दिन रात इन इंद्रियों के विषय ज्ञान में ही लगे रहते हैं, वही अंधकार में जाते हैं। इसलिए केवल इतनी मत सोचो, केवल फल को प्राप्त करना, देवताओं को खुश करके उनसे अपने अनुरूप फल की चाह करना, यही विद्या नहीं है ना, इसको ज्ञान नहीं कहते हैं नारायण। हम लोग समझते हैं यही बड़ा ज्ञानमान है, बड़ी ज्ञान, जिसको ये मिल गया इसने इसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विद्या बुद्धि है, देखो इसने ये सब कुछ प्राप्त कर लिया। संसार में इसीलिए कहते हैं जो बहुत ज्यादा धनवान होते हैं लोग उन्हें बहुत ज्यादा गुणवान समझने लगते हैं, उसी को बड़े ज्ञानी गुणी समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हो जाती है ना। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि जिसने भोग ज्यादा इकट्ठा कर लिया, जिसने द्रव्यादि बहुत ज्यादा इकट्ठा, धन ज्यादा संचय कर लिया, तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा गुणी ज्ञानी नहीं हो गया। गुणी ज्ञानी तो वो है जिसने इन सब को अलग करके अपने को देखा है, अपनी मन और बुद्धि से इन सब को हटा करके, अपने मन बुद्धि प्राण से इनको अलग करके, जिसने मन बुद्धि प्राण को स्व स्थान पर अपने अपने गोलोक में स्थिर करके, अपने आप में लौटाकर स्थिर करके, जिसने महावाक्य से वो बोध प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञानी है, वही तत्ववेता है। और ऐसे तत्ववेता के लिए उपनिषद कहती है कि वह अंधकार को भोगने वाले लोग हैं, इसलिए ऐसा कर्म न करें जिससे हमें इस घोरतम अंधकार में जाना पड़े। हमारा ज्ञान हमारा स्वरूप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम दूंगी। बड़े भाव से भगवत नाम स्मरण कर लें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।